मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार फ्रेंड्स, फिलहाल मैं प्री एग्जामिनेशन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके सही उत्तर तक किस प्रकार से पहुंच सकते हैं इस विषय पर बात कर रहा हूं। और ठीक इससे पहले के अपने ऑडियो में मैंने आप सबसे इसके बारे में बातें की थी कि प्रश्नों के सही उत्तर तक पहुंचने के आधार कौन कौन से होते हैं, और उसके तहत मैंने 5 आधार मुख्य रूप से आप सबको बताए थे, ऑब्जर्वेशन, अनुभव, अध्ययन, तर्क और अनुमान या यूं कह लिए एहसास। बहुत से मुझे मेल मिले हैं और आप लोगों ने बकायदे जो ऑडियो वीडियो देखा है यूट्यूब पर उसमें तरह के अनुरोध भी किए हैं कि इन पर विस्तार से बातें की जाए, और मुझे भी लग रहा है कि हाँ ऐसा किया जाना चाहिए, क्योंकि बता देने भर से बात नहीं बनेगी तब तक जब तक कि इन्हें समझाया न जाए। दरअसल जो स्टूडेंट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं उनके सामने एक बहुत बड़ा संकट यह होता है कि उनके दिमाग में ये धारणा बनी हुई है कि केवल पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। इस पर मैं हमेशा बात करता रहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, पढ़ना तो है ही, उसका तो कोई विकल्प नहीं हो सकता, लेकिन वहीं तक सीमित रखना भी शायद मुझे लगता है कि पढ़ने की सही तैयारी करना नहीं होगा। इस दृष्टि से भी इस विषय पर बात किया जाना आपके लिए उपयोगी होगा। तो दोस्तों, आज मैं आप सबसे बात करने जा रहा हूँ ऑब्जर्वेशन के बारे में, जिसे आप हिंदी में कहते हैं अवलोकन। इस ऑब्जर्वेशन को, इस अवलोकन को थोड़ा सा आप उस समय पर आरोपित करके देखिए जब आप सही मायने में सिविल सर्वेंट बन जाएंगे। आप किसी डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर होंगे, आप किसी डिस्ट्रिक्ट के एसपी होंगे या और किसी दूसरे जिम्मेदारी वाले पद पर होंगे, और वहां आपको डिसीजन लेने, निर्णय लेने, अपने सहयोगियों के बारे में डिसीजन लेने हैं जो आपके मातहत काम कर रहे हैं, जिनकी समस्याओं का समाधान करना है आपको उनके बारे में डिसीजंस लेने हैं, सरकार यदि आपसे कोई सलाह मांग रही है तो उसके बारे में आपको सलाह देने हैं, ये सब तो आपको करना है। तो जब आप ये सब कर रहे होंगे तो उस समय आपकी मदद कौन कौन सी चीजें करेंगे, इस पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि यूपीएससी ने लिखा है कि जो सिविल सर्वेंट के कैरियर के लिए जरूरी हो, यूपीएससी ने जो इसके लिए निर्देश दिए हैं प्लीज आप उसे ध्यान से पढ़ें, मेंशन किया हुआ जो सिविल सर्वेंट के कैरियर के लिए जरूरी हो। तो अभी जो मैंने बातें कही उसके लिए जरूरी क्या है, क्या सिर्फ पुस्तकें या और भी कुछ? ठीक है, पुस्तकों के लिए बहुत साफ तौर पर वहां लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग, यानी उन्हें अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उन्हें रटन तत्वता नहीं चाहिए। इस पर काफी बातें मैं कर चुका हूं, लेकिन जब हम प्री की दृष्टि से देखते हैं तब आपके दिमाग में ये बात शायद आती होगी कि जो पूछा गया है वो तो वही होगा जो किताबों में होगा। डेफिनेटली किताबों में ही होता है, सिलेबस से बाहर जाकर के वो चीजें नहीं पूछते हैं, ये तो आप विश्वास रखिए। तो फिर आपको क्यों ऐसा लगता है कि जो पूछा गया है या तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, या किताबों में वो नहीं था तो मैं पढ़ता कहां से, या तो मैंने मतलब दोनों स्थिति हो सकती कि किताबों में था लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया, या किताबों में ही नहीं था तो मैं पढ़ता कहां से। तो जब किताबों में नहीं था और मैं पढ़ता कहां से तो फिर ये प्रश्न पूछ क्यों लिया गया है, फिर मैं इस प्रश्न के उत्तर दे कैसे सकता हूँ। फिर आपको लगने लगता है कि नहीं ये आउट ऑफ सिलेबस है, जबकि वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है, क्योंकि यूपीएससी का जो सिलेबस है वो एक एक पॉइंट पर बात नहीं करता, वो एब्स्ट्रैक्ट तरीके से बात करता है, वायवी तरीके से, अस्पष्ट तरीके से। उसने एक वाक्य कह दिया और पता लगा कि उस वाक्य में ढेर सारे टॉपिक्स आ गए, अब आप उन टॉपिक्स पर तैयारी करते रहिए, उसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन सीमा है। तो दोस्तों यहीं पर तैयारी का जो एक पक्ष आता है वह आता है ऑब्जर्वेशन, यानी कि यूपीएससी एक ऐसे युवा को सिविल सर्वेंट बनने के लायक मानती है जो अपने आसपास के वातावरण के प्रति सतर्क रहता है, वो किताबों की दुनिया से बाहर निकल करके भी जो बाहर की दुनिया है उनको भी पढ़ता है, उन्हें भी अपने दिमाग में रखता है, समझने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें आप देखने के बाद कुछ रखते हैं, नहीं। इसके लिए मैं एक शब्द इस्तेमाल यहां करना चाहूंगा, सतत जागरूकता, कंटिन्यूड अलर्टनेस, सतत जागरूकता। ये आध्यात्मिक जगत का भी शब्द है, सतत जागरूकता। जब आप ध्यान मेडिटेशन वालों से जब बात करेंगे तो सतत जागरूकता की बात करेंगे, और भी बहुत से दूसरे हमारे जो फिलोसफर है वो सतत जागरूकता की बात करते हैं। सतत जागरूकता क्या है? सतत जागरूकता का ये मतलब नहीं है कि आप हमेशा हमेशा तनाव में हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, इसको भी समझो उसको, नॉट एट ऑल। यह आपके दिमाग की एक स्थिति होती है, आपने अपने दिमाग को इस तरीके से ढाल लिया है कि वो अनजाने में भी जागरूक है, ये नहीं कि आप कोच कोच के उसे जागरूक बना रहे हैं कि भैया अब जागरूक बनो, अब देखो क्या हो रहा है, अब इसे समझो, अब इसे दिमाग में रिकॉर्ड करो, नॉट एट ऑल। आपका दिमाग ही इस रूप में ढल गया है, उसका ये चरित्र बन गया है, उसकी ये आदत हो गई है कि वो जिन चीजों को भी देखता है बड़े ध्यान से देखता है, रिकॉर्ड कर लेता है, सतत जागरूकता, वो अलर्ट रहता है। आप कभी अपने बारे में सोच करके देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि आप सुन रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहे हैं। मतलब सुनने का काम आपके कान तो कर रहे हैं लेकिन आपका जो दिमाग है आपके कान का साथ नहीं दे रहा है, यहाँ जुगलबंदी गड़बड़ा गई है। तो ठीक है, सुनने का काम हो गया लेकिन रिकॉर्ड करने का काम नहीं हुआ। अवलोकन में भी तो यही होता है, आपकी आंखें देख रही हैं लेकिन रिकॉर्ड करने का काम जो आपका दिमाग करता है, चूंकि वो सोया हुआ है, या अगर सोया हुआ नहीं भी है तो और कहीं गया हुआ है, तो जहां गया हुआ है उसको रिकॉर्ड करेगा, जो आप देख रहे हैं उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। कई बार ऐसा होता है कि नहीं होता है, आप क्लास में पता नहीं कितनी देर तक लेक्चर सुन रहे होते हैं और पता लगा कि लेक्चरर्स पूछते हैं कि भाई ये बताओ कि इसका क्या उत्तर होगा, तो आप हड़बड़ा जाते हैं कि इसका उत्तर मैं कहां से बताऊं, अभी तो कुछ बताया नहीं सर ने, जबकि सर ने बताया था, लेकिन आपका दिमाग उस समय कहीं और चला गया था तो आपने रिकॉर्ड नहीं किया। तो यदि आपका दिमाग हमेशा जागरूक है, अलर्ट है, तो इसे ही कहते हैं सतत जागरूकता। और यदि आप इस स्थिति में हैं तो मान करके चलिए कि आप सही मायने में एक वैज्ञानिक तरीके से अवलोकन का काम कर रहे हैं, यानी कि आप अपने आसपास के वातावरण के प्रति सतर्क हैं। और इस शब्द का भी इस्तेमाल यूपीएससी ने किया है, अपने समय के प्रति सतर्कता, चाहे वो घटना के रूप में हो, चाहे वो समाचारों के रूप में हो, चाहे वो समस्याओं के रूप में हो, चाहे वो आवश्यकताओं के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, क्योंकि यही आपको करना है। इसे प्लीज दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए, तभी आप यूपीएससी के अनुकूल उत्तर ढूंढ करके आप अपने आप को सफल बना सकेंगे। मैं केवल अपने ही बारे में सोचता रहूं, अपने को ही संपूर्ण समझता रहूं और ये मान करके चलूं कि मैं जो कर रहा हूं वही सब कुछ है, वही ठीक ठाक है, इससे परे और किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो मुझे लगता है कि यह एक प्रकार की हठधर्मिता होगी और इससे तो आपको मुक्त होना ही होगा यदि सच में आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो, और स्पेशली यदि आप प्री को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। इसके सिवाय आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। यहां मैं एक चीज स्पेशली आपको बताना चाहूंगा कि यूपीएससी जब इस तरह के प्रश्न चुनती है, उठाती है, आपसे पूछती है, यानी कि जो सतत जागरूकता से संबंधित होते हैं या जिनका उत्तर ऑब्जर्वेशन के थ्रू दिया जा सकता है, तो याद रखिए कि वो हमेशा उसकी कोशिश होती है कि वो इस तरह के प्रश्न चुने जो सबके लिए सहज जैसे हो, मतलब एकदम से एक्सक्लूसिव ना हो। हालांकि ये बात ठीक है कि दुनिया में ऐसा कोई क्षेत्र है ही नहीं जो विषय में ना आता हो, वो विषय के अंतर्गत भी आते हैं, तो ठीक है, उस विषय को जिसने पढ़ा है उसके लिए वो एक प्रिविलेज हो गया, उसके लिए एक माइलेज हो गया कि वो उसका उत्तर बहुत आसानी से दे देगा। हो सकता है कि उसने किताब में पढ़ लिया, लेकिन आपके लिए वो प्रिविलेज नहीं है, आपने किताबों में नहीं पढ़ा है, लेकिन आपने देखा जरूर ऐसे प्रश्नों पर सोच करके देखे। जब मैं आपको ऐसे प्रश्न बताऊंगा, यू मान करके चलिए कि मैं केवल हवा में बात नहीं कर रहा, मैं प्रमाण इसके दूंगा, आज वक्त नहीं है, कल हम लोग इस पर बात करेंगे। आप उन्हें देखते हैं, आप उनके बारे में सुनते भी हैं, यानी कि दूसरे उस पर बातचीत कर रहे होते हैं, कभी कभी अखबारों में भी हो सकता है कि उनके बारे में कुछ छप जाता हो, आपकी निगाह न पड़ी हो, ये सब कुछ होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है जो मैंने इससे पहले कहा कि उस समय आपका दिमाग जागरूक स्थिति में नहीं था, इसलिए वह आपसे मिस हो जाता है। और जब मिस हो जाता है और एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तब आपको ऐसा लगता है कि ये प्रश्न कहाँ से आ गया, इसे नहीं आना चाहिए था, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये कैसे बनेगा। और जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, मेरे पास भी इसका अनुभव है, ऐसा नहीं है कि प्रश्न तो हमें सरल सा लग रहा है लेकिन बन नहीं रहा है, तो हमारे अंदर फिर खीज बढ़ जाती है कि यार इतना सरल प्रश्न है ये मुझसे क्यों नहीं बन रहा है, जब यही नहीं बन रहा है तो फिर और क्या बनेगा, तो फिर मेरा आंतरिक संतुलन गड़बड़ा जाता है। और जब मेरा आंतरिक संतुलन गड़बड़ा जाता है तो उसका जो निगेटिव इम्पैक्ट है वो दूसरे प्रश्नों पर भी पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि मुझसे एक प्रश्न नहीं बन रहा है तो बात खत्म हो गई, नहीं, यदि सरल सा प्रश्न नहीं बन रहा है, अवलोकन वाले प्रश्न नहीं बन रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि तो बनना ही चाहिए था, ये क्यों नहीं बन रहा है, तो फिर औरों का क्या होगा, तो मैं अपना आंतरिक संतुलन खो बैठता हूँ। तो दोस्तों मेरे इस बिंदु पर आप केवल विचार करें, अपना मूल्यांकन करें। डेफिनेटली कल मैं इस पर बात करूंगा कि कौन से ऐसे प्रश्न थे जिन्हें हम इस श्रेणी में रख सकते हैं, तब शायद आपको मेरी बातों पर ज्यादा यकीन हो सकेगा। तो आज बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूँ। इनमें से तीन दोस्तों के नाम हैं, अनीशा शर्मा दिल्ली से, सौम्या गुप्ता बाराबंकी उत्तर प्रदेश से और रोशनी तिवारी वैशाली बिहार से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार।